हम अब गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। सूही महला चौथा कर छेवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नीच जात हर जपतियां, उत्तम पदवी पाए। पूछो पितर दासी सुतै, किसन उतरिया घर जिस जाए। नीच जात हर जपतियां, उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुतै, किसन उतरिया घर जिस जाए। हर की अकत कथा सुनो जन भाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए। रहाओ रवदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इक गाए। पतित जात उत्तम भया, चार वरण पे पग आए। नाम देव प्रीत लगी हर सेती, लोक छिपा कहे बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे, छोड़े हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख अठसठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। जितने भगत हर सेवका, मुख अठसठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए। जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। परम सत्कार योग सत्संग जियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपने मन दियाँ बिरतियाँ एकागर करो जी, ते गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। ए शब्द राग सूही विच धन धन चौथे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी का उच्चारण किया होया है। और इस शब्द विच साहिब भगतान जो उस्तित कर रहे हैं, भगतान को वड्याई दे रहे हैं। वो भी उन्होंने भगतान जिन्होंने इस जगत ने नीवा करके जानिया है, उन्होंने जिक्र है इस शब्द के। साहिब शुरू करते हैं, नीच जात हर जपते हैं, उत्तम पदवी पाए। बेशक थोड़ा जन्म नीची जाति होया हो, अखौती नीची जाति, ये सब इको अकाल पुरख के बच्चे हैं, अलग अलग नहीं हैं। लेकिन जो इस लोक ने, इस दुनिया ने कहा कि नीच जात, अखौती जात, नीच अखौती नीच जात पैदा होया, अगर प्रभु का नाम जपते हैं तो उत्तम पदवी प्राप्त कर रहे हैं। उत्तम पदवी प्राप्त करनी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जो उच्ची जाति के हैं उन्होंने उत्तम पदवी, उन्होंने प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, नहीं। हर जाति के लोग बराबर हैं, हर का हक बराबर है। तो साहब कह रहे हैं कि नीच जात हर जपते हैं, जो नीची जाति वाले जपते हैं प्रभु का नाम, उत्तम पदवी पाए। उदाहरण के तौर पर कहते, पूछो बिदर दासी सुतै, किसन उतरिया घर जिस जाए। बिदर नु पूछ लो, भगत बिदर नु, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਦੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੁਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦਾ। ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਅੰਬਾ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਸੁਦੇਸ਼ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਾਂਡੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੁਰ। ਰਾਣੀ ਸਤਿਆਵਤੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਬਿਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਤਾਨਹੀਨ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸ਼ਪਥ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਵੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਨਟਾਇਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਨ, ਔਰ ਨਾ ਅੰਬਿਕਾ ਨੇ ਨਾ ਅੰਬਾਇਕ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਅੰਬਾ ਨਾ ਅੰਬਿਕਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਆਵਤੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ। ਸੋ ਬੜੇ ਰਿਲਕਟੈਂਟਲੀ, ਬੜੀ ਹੈਜੀਟੇਟਿੰਗਲੀ ਅੰਬਾ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਅੰਬਿਕਾ ਗਈ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਂਡੂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਾਂਡੂ, ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੁਰ ਤਾਂ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵਿਦੁਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਿਦੁਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਏ ਵਿਦੁਰ ਦੇ ਘਰ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਸਨ, ਕਰਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਦੁਰ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਗ ਖਾਧਾ ਹੈ ਖੀਰ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀਤੀ, ਨਾਮ ਚੱਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਪੁੱਛੋ, ਵਿਦੁਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੇ ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ, ਵਿਦੁਰ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਆਏ। ਹਰ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੁੱਖ ਫੂਕ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਜਨੋ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਥਾ ਇਹ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਕਥ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ये सहसा दुख भूख सब ले जाए, चाहे सुख दुख दूर हो जाएगा, भूख दूर हो जाएगी, ये सहसा परम दुख दूर, परम दुख होएगा, दूर होएगा, दुख दूर होंगे, सब कुछ भूख दूर हो जाएगी। रविदास मार उस्तत करें हर कीरत निमक एक गाय, रविदास चमार लेकिन पल पल प्रभु नु आराध्य से, रविदास चमार उस्तत करे हर कीरत निमक एक गाय, हर एक क्षण वो कीरत गाँदा से, पथित जात उद्दम भया, पथित जात का होने के कारण, खौती नीवी जात होने के कारण, फिर भी भया उत्तम भया, चार वर्ण पय पक आए, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण आके उसे पैरांच पाए। आदकाल तो ही समाज जड़ा है, उसने जो जो थोड़े थोड़ी खूबियां हैं उसे मुताबक तुम चुने है, जिन्हें को दिमाग का बल सी वो सलाहकार बन गए लोगों के, जिन्हें को बाहुबल सी उन्होंने रक्षा का काम उन्होंने हाथ आ गया, जिन्होंने व्यापार किया, जिन्हें खेतीबाड़ी की थी, और चौथा जिन्हें सब तक जे सब तो घट ज्ञानवान सन उन्होंने सब की सेवा की थी। लेकिन ये चारों जो हिस्से सन ये अलग अलग नहीं सन, अगर पहला हिस्सा जो दिमाग वाला सी अगर शक्ति बल पैदा कर सकता है और दिमागी कट है तो वो फिर दूसरी श्रेणी जा सकता सी, दूसरी वाला पहली जा सकता सी, और इको परिवार ही चारों रह सकता था, कोई भेदभाव नहीं सी। तो वक्त नाल जो राजे महाराजा ने इस तरह ही वंड की थी समाज की, जेडे ज्ञानवान सन, जेडे ताकतवर सन, जेडे व्यापारी सन, जिन्हें को काम कराया जाता सी, लेकिन इन्होंने कठिया नहीं रहन देता, अलग अलग कर देता, ताकि उन्होंने राज बाल रह सके। जेडे कि ज्ञानवान सन उन्होंने मंत्री बने राज्यों के, जेडे बाहुबली सन उन्होंने सिपाही बने, लेकिन उन्होंने नाल नाल ही रहन दिता, इस तरह व्यापारी इस तरह जो काम कार करने वाले सन, लेकिन हाले तक अलग अलग नाम जिसी किया वंडिया गया। वैदिक काल तक इस तरह चलिया, लेकिन उसके बाद अलग वंड हो गई। मनुस्मृति के मुताबक ब्राह्मण हैं जेडे कि ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सलाहकार बनते हैं, वो जप तप करते हैं, थोड़े गुरु भी बन जाते हैं। ये बाहुबली हैं और क्षत्रिय के आ गया और वो फिर थोड़ी रक्षा करते हैं। तीसरे जिन्होंने व्यापार किया, जिन्होंने खेतीबाड़ी की थी उन्होंने वैश्य थी जा गए, तो चौथे जिन्होंने सब की सेवा की थी उन्होंने शूद्र के आ गया, और काम की सफाई करना, मुर्दे चोना, जान मुर्दे मरे हुए मुर्दा मरे हुए जानवरों ने चुकना, उस तो बाद आ गए दलित। लेकिन पिछली दो जड़े हैं शूद्र से दलित, इन्होंने सामाजिक हालत बहुत बुरी गिनी गई, ना तो अच्छा खाना ना अच्छा पहना। फिर समाज ने जेडे कि कोई ऐसे लोग सन जिन कोई शांति पर पसंद नहीं सी, उन्होंने रंग के आधार पर वंड कर दी, जेडे गोरे चिट्टे वो ब्राह्मण, जे लाल रंग के क्षत्रिय, जे पीले रंग के वो वैश्य, जे काले रंग के वो शूद्र हो गए, दलित हो गए। फिर गुणा के आधार पर सतो गुणधारी जेडे सन, सतो गुण जे प्रकाशमान शांतिपूर्वक, उन्होंने ब्राह्मण किया गया। जे रजोगुण वाले सन जिन्हें बाहुबल से उन्हां नूं क्षत्रिय कहा गया। जिन्हां विच रजोगुण ते तमोगुण दोनों सन उन्होंने वैश्य किया गया, और जिन्हां कोलों तमोगुण सी सिर्फ अंधकार सी उन्हां नूं शूद्र कहा गया। ये मनुखा ने की थी, ये मनुस्मृति के मुताबक है। इसके मुताबक फिर ब्राह्मणा ने ही पहली जाति नहीं जो ज्ञान हासिल करना उन्होंने प्रोरोगेटिव बन गया, होर जाति नहीं सी कर सकती ज्ञान हासिल। अगर किसी शूद्र के कन विच वेद पाठ पै जाए तो फिर सिक्का टाल के सिक्के पिघला के कन च पा देंगे सी ताकि अगे सुन के काबल ही न रहे, उन्हों का खाना भी अलग। लेकिन ये सब मनुस्मृति के मुताबक से, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन सदियां बीत गई इस वर्ण के मुताबक तो सब के मन ये पै गया कि ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, इन्हों का होर काम है। ज्ञान सिर्फ ब्राह्मण के हाथ आ गया, बाहुबल सिर्फ क्षत्रिय के हाथ आ गया, व्यापार आ गया वैश्य के कोल, तो जो गंदा काम से वो आ गया शूद्रा के कोल। ये समाजिक वंश। फिर वक्त आया भक्ति काल का, जिस भगत कबीर होए, भगत रविदास जी होए, भगत नामदेव जी होए और अनेक होए भगत जिन्होंने खुद सफ़र किया क्योंकि नीची जाति के सन। कबीर जुलाहा, नामदेव जी धोबी, रविदास जी चमार, सतना भगत कसाई, सैन लाई सैन नाई सी। सो वाल्मीकि वो भी करौची जाति, जिसने रामायण लिखी वाल्मीकि वो करौची जाति सी। इन्होंने आवाज़ का उच सफ़र किया, आवाज़ उठाई, लेकिन उन्होंने आवाज़ कली कली सी, वो ब्राह्मणवाद के अंदर जाके दब गई, वो ब्राह्मण के अगे नहीं बोल सके, ब्राह्मण फिर भी अगे आ गए। फिर वक्त आया गुरु नानक का, गुरु नानक साहब ने उच्ची जाति से सन बेदी सन, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई, चारों धर्मों के गुण दसे, तो चारों वर्णों एक वर्ण बनाना है। उन्होंने शिक्षा तो यह सी ना कि चारों वर्णों एक वर्ण बनाया। एक आज की हालात देखो, असी गुरु दे सिख असी वंडे हुए हैं, असी ब्राह्मण भी हाँ, असी ब्राह्मण जट भी कहने, असी खत्री भी कहने, असी वैश्य भी शूद्र भी अलग 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 ना, फिर क्षत्रिय भी 100 वरायटीज़ है, वैश्या की भी 100 वरायटीज़ है, उन्हें कुछ नीच हैगी है। ये सब के अगेंस्ट गुरु साहब ने आवाज़ उठाई, लेकिन असी कितने गए, उसे जो उत्थे रह गए। रविदास चमार उस्तत करे, हर खीरत नमक एक गाय। रविदास चमार, रविदास की जी पिछले जन्म की कथा है वो बड़ी अद्भुत है। जन्म होया इन्हों का एक चमार के घर, और रविदास जी दूध नहीं पी रहे, रोई जा रहे हैं, सुंदर चेहरा लेकिन रोई जा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे। 5 दिन पीत गए तो माँ ने कहा कि जरा पूछो जाके किसी नूं, ये रो क्यों रहे। पिता बाहर निकले सामने रामानंद स्वामी नज़र आ गए, वो जा रहे से। तो रघु पिता का नाम से रघु कहता जी इस बच्चा पैदा होया पर रोई जा रहे हैं। स्वामी जी ने भी कहा कि मैं भी तेरे घर ही आ रहा हूँ, कि मैनू प्रभु ने एक मैसेज दिता है, एक भगत पैदा होया है, मैं तेरे घर ही आ रहा हूँ। अंदर गए तो बच्चा रो रहा है, तो भगत रामानंद जी ने कहा कि रोना ठीक नहीं, पिछले जन्म का फल सी, उन सब ठीक हो गया है, आगे तो कर्म ठीक रखे। ये कहना सी बच्चे ने रोना बंद कर दिया, दूध भी पी लिया। ये कह के स्वामी जी बाहर चले गए। स्वामी जी शिष्या ने पूछा कि ये की कहानी सी जनाब, की होया सी कि तुसी ये कहा कि पिछले जन्म का फल से। तो स्वामी जी ने कहा कि पिछले जन्म में एक ब्रह्मचारी सी मेरे आश्रम च से, और इसका काम से रोज़ जाके भिक्षा मंगनी, चुटकी चुटकी भिक्षा मंगनी, चुटकी चुटकी घर च हर अलग 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 घर चो जाके चुटकी चुटकी भिक्षा लैनी। एक दिन प्रसाद से ये बाहर निकलिया, निकले फिसल गया तो नाल एक बनिया रहिंदा सी, उसका बेटा चुक के लै गया सी। क्योंकि बरसात हो रही सी तो उस बच्चे ने कहा कि तू कितने जाएगा, मेरे को सब कुछ ले जा। एक घर चों सब कुछ लेके वापस आ गया। उस रात रामानंद स्वामी जी की सूरत नहीं जुड़ी, राम का नाम नहीं ले सके, बेचैनी रही। सवेरे उठ के उन्होंने ब्रह्मचारी ने कहा कि भाई पूछा भी कितों लैके आया सी सीधा, सीधा मैं एक करोड़ लैके आया सी, वो सामने जरा बनिया रहता है। इसते स्वामी रामानंद जी गुस्से होके क्या, वो तो चमार है, वो तो लोगों ने लुटता है, गरीबों की भी पतल पतल लुटता है, उसे करो तो लैके आया, वो भी इको करो, मैं नाम नहीं जप सकिया, जा तू चमार दे घर पैदा हो, तू चमार बन। दो दिन बाद उस ब्रह्मचारी की हो गई मृत्यु, तो साल बाद पैदा होया रघु दे घर, रघु चमार दे घर, जैसे कि खुद राम नाम दे सिमर, लेकिन है चमार, राम नाम दे जाप करता लेकिन है चमार। तो इस तरीके के नाल रविदास जी दे जन्म चमार दे घर होया, ये उन्होंने पुनर्जन्म की साखी है। जिस तरह बच्चा वड्डा होया, राम का नाम ज़्यादा जपता है, कम नहीं करता, तो माँ बाप ने सोचा ब्याह कर देने, शादी हो गई, फिर भी कम नहीं से करते। स्वामी रामानंद आश्रम में जाके जाप करते रहने से, इससे माँ बाप ने दुखी होके पति पत्नी ने बाहर कटता, रविदास उसकी बीवी ने घरों बाहर कटता, तू जा अपना व्यापार तो खुद कर। उनकी बीवी बड़ी सहनशील सी, उन्होंने शाही मार्ग से एक छोटी जी झोंपड़ी बनाई, नाल एक थड़ा बनाया आते जाते साधुओं के रहने वास्ते, बैठने के वास्ते, अकार बैल चलता रहा, पाठ पूजा करते रहे। इन्ना पाठ पूजा किया कि चार वर्ण आके उन्होंने आके शिष्य बन गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आके दीक्षा लेंदे सी रविदास जी को। हुण ब्राह्मणों का कम ठप हो गया, बनारस से हुण ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सुल्तान में शिकायत की थी। सुल्तान ने कहा ठीक है बुलाओ। तो रविदास जी ने कहा कि मैं तो इस सब नाम जपता, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, खुद आंदे मेरे को। फैसला ये होया कि रविदास के मंदिर जो मंदिर मूर्तियां हैं ना, जिन्हें कि चुभदियाँ ब्राह्मणों को, वो चुक के गंगा के परले पासे रख दो, और फिर ब्राह्मण भी तो रविदास भी वारी वारी बुलाएंगे अपने कोल, जिस दे कहे तो मूर्तियाँ आ जाएंगियाँ, पूजा का कुछ होएगा। सुल्तान ने पहला किया ब्राह्मणों ने, क्योंकि वो शिकायत कर रहे सन। ब्राह्मण ने वेद पाठ किया, होर मंत्र जाप किए, तंत्र मंत्र सब कुछ कोशिश की थी, लेकिन मूर्तियाँ हिलिया नहीं। उन्होंने सुल्तान ने कहा कि जी यह है कलयुग, इस वक्त मूर्तियाँ जड़ी हैं स्थिर हैं, ये सिर्फ अचल होके जगियासा आशीर्वाद देंदी। हसन वाली गल से फिर वारी आई रविदास थी। रविदास जी अपने ही उचारी हुई वाणी उचारण के, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब प्रत्यार क्या कीजिए, मेरे वगैरह तो कोई दीन नहीं है, तू दयालु है मेरे को ला जा वापस। जिसने शब्द पूरा किया उन्होंने देखे कि मूर्तियाँ हिल रही हैं और ऐसा ऐसा लहरा जो ऊपर आके सीधा राम इन्होंने रविदास जी की गोदी जाके पहुँच गई। रविदास जी ने भी चुकिया मूर्तियाँ अपने अपने मंदिर जाके लिया है, उठे उन्होंने प्रकाश किया और नाम जपया। इस तरीके के नाल राम नाम की जित हुई कर्मकांड के उपर। अगे बच के ये खबर पहुंची चित्तौड़ तक। चित्तौड़ की राणी चाली बड़ी भक्त किस्म की सी, उन्हें अपने राणा जी ने कहा कि मैं जाना है बनारस ते रविदास को जाना है चमार। राणा जी ने बुलाया अपने सलाहकार, बिल्कुल गलत धर्म पृष्ठ हो जाएगा थोड़ा तो कोई चमार थोड़े नज़दीक आ जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि सीना के जेरे शूद्र हैं अगर थोड़ी रसोई नज़दीक भी आ जाए तो थोड़ा खाना भ्रष्ट हो जाएगा, तो हाथ लगा दें तो उसी भ्रष्ट हो गए, ब्राह्मणों का हाथ कटवा देंगे सी, ये असलियत है। पर क्यों रानी जी ने जिद की थी तो राणा जी ने कहा ठीक है, दूर दूर तो नमस्कार करें। वो पहुंची बनारस, जब बनारस के पांडे आ गए कि जो तोड़े जी हवेली है तोड़े वास्ते चित्तौड़ के गढ़ वास्ते मेरे साडे को लाओ। उन्हें कहने मैं तो पहले मंदिर जावगी रविदास से, उस बाद तोड़े को लावगी। और सारा वक्त रविदास जी से बोली रहे और अंत में जिद लै करके वो नाम दान लिया। जब रविदास कहता रहा मैं चमार तुसी उच्ची करानी थे थोड़ा परिवार पसंद नहीं करेगा, लेकिन राय ने जिद की थी और रविदास जी ने राम नाम का जाप दिता। इस तरीके के नाल जब एक गल हुई तो ब्राह्मण ने फिर शिकायत की थी, ये तो कितना ढोंगी है, सानू कहता है कि राम का जाप करता तो इतने सिर्फ कुछ होर कह रहा है, मूर्तियां की पूजा करता है, लेकिन एक एक भगवान में जपता है। तो नागरमल उसका सुल्तान सुना देना नागरमल। नागरमल ने अपने घर एक यज्ञ अरेंज किया ब्राह्मणा के अलावा इस भी बुलाया। इसकी उपस्थिति तो ब्राह्मणा इतराज से कि नीवीं जात का बंदा किस तरह पाठ पूजा कर सकता है। खैर रविदास जी ने कहा ठीक है बाहर बैठता हूँ मैं। फिर वक्त आया प्रीति भोज का, रविदास जी ने बैठाया गया लाइन के बिच तो ब्राह्मण ने कहा गलत गल इस तरह से नहीं छका फिर खाना पृष्ठ हो जाएगा। रविदास कहता ठीक है मैं दूर बैठता दूर एक स्टेज पर बैठ गए। अच्छे ब्राह्मण छत्ती प्रकार के भोजन खा रहे हैं लेकिन स्वाद किसी को नहीं आया। राजा पूछे स्वाद नहीं आया, कहते स्वाद किस तरह आता मेरे ना तो रविदास बैठा सी। हर ब्राह्मण ने यही किया बिल्कुल तो रविदास बैठा सी, जो भ्रम से उन्होंने अर्थ कहने का मतलब यह है कि भगवान जोड़ा है अपने भक्तों की रक्षा करता है। भगवान ने खुद ब्राह्मणों के मन च पाया कि देखो ये गल गलत है। मीराबाई ने भी कहा कि जो कर्म कांड तुम करते हो इस छट के एक नाम राम जपो। इस तरीके के नाल इन्होंने राजस्थान विच भी प्रचार किया तो अंत विच ये पंजाब की तरफ भी गए। सो ये जो भक्त जन हैं इन्होंने राम का नाम का उच्चारण किया इसलिए उच्चे हैं। नाम देव प्रीत लगी हर सेती, नामदेव नू जरा कि टोपी से छिपा, नाम देव प्रीत लगी हर सेती लोग छिपा कहे बुलाए। लोग तो कहते हैं छिपा, लोग तो कहते हैं तो टोपी है, लेकिन उसनू राम नाम प्रीत लगी। नाम देव प्रीत लगी हर सेती, लोग छिपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम देव लिया मखलाए। नामदेव जी शुरू तो ही राम के नाम नाल प्रेम सी, इनका परिवार भी राम नाम जपता सी। एक दफा इसका पिता किसी व्यापार वास्ते दूर गया, उसने किया नामदेव ने कि नामदेव मैं जा रहा हाँ ठाकुर जी की पूजा कर दें, दूध छका दें, दूध तो पहले भोग लवाई फिर अगे बधी। बाप चला गया तो नामदेव जी बैठे ठाकुर जी के सामने और भोग लगवा रहे हैं। हम भोग किस तरह लगाते, बहुत वक्त बीत गया जब भगवान ने नामदेव जी प्रीत देखी, उसकी भावना देखी तो प्रगट होके नामदेव नू दर्शन दिता तो दूध पीता, क्योंकि भगवान जड़े हैं थोड़ी भावना के पिछे हैं, ना कि किसी होर चीज़ के पिछे, ना पैसा ना जायदाद ना कुछ। इस तरीके दे नाल नाल दे पिंड च विठल राज दा मंदिर सी, पिंडरपुर विठल राज दा मंदिर, उत्थे जा के पूजा करदे सन। विठल जी दी मूर्ति एक लाथे खड़े हैं पत्थर दे उपर, और नामदेव जी उन्हें पैर पकड़ के बैठे रहते सन। तो विठल जी ने कहा कि सुन नामदेव, फिर होर भी भक्त हैं, मेरे पैर छड़ दे, जब तू कहेंगा बुला लेंगा। उन्हें पैर छड़ दे, फिर याद किया, फिर पकड़ लिया उन्होंने। इस तरीके से नाल भगवान ने उन्होंने 72 दफ़ा दर्शन दिए, साक्षात दर्शन। नामदेव जी अपने गुरु ज्ञानेंद्र दे नाल भ्रमण वास्ते गए, ये दिल्ली पहुँचे, राजा सी, उसने सुनिया कि ये भक्त जन आए हैं बनारस तो जमुना के किनारे हैं, कहते भिक्षा ले जाए। तो नामदेव ने बुला के क्या, ये गौ मर गई है, कल इसमें चबा दे। भगत ने नाम बहुत दे गया कि मरी हुई चीज़ नहीं जी सकती, तो उन्होंने कहा फिर तू मुसलमान बन जा। बहुत बड़ी गाथा है इसलिए मैं छोटा कर रहा हाँ कि प्रभु ने फिर ठीक है, प्रभु ने अपने भगत की लाज रखी तो गौ ने जीवा दिता। इसी तरीके दे नाल अगे गए, अगे एक मंदिर जाके देखा था ब्राह्मण तो खत्री पूजा कर रहे सन, ये भी जाके बैठ के राम का नाम जपन लगे। जब उन्होंने देखा कि ये तो शूद्र है, उन्होंने बाँह पकड़ के मंदिर के पिछे बिठा दिता। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह प्रभु वो नामदेव ने मंदिर के पिछे बैठ के प्रभु ने आराध्या, जो दिहोरा मुड़ गया, जेरा दरवाजा सी वो नामदेव चला गया। इको शिवालय है जिथे कि नंदी अगे है, ये मूर्ति पिछे है, नहीं तो जिस जगह से भगवान की मूर्ति है, जिस जगह उन्होंने दरवाजा है, उत्थे नंदी जी हैं। ये इस गल का प्रमाण है कि मंदिर घूमया अपने भगत वास्ते। असी भी कहने हर युग युग भगत तो पाया, पैज रखता आया राम राजे, हर नाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारिया निंदका पिट दे, नाम दे मुखलाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छाया। एक शिक्षा है सानू कि असी जातियां पिछे नहीं जाना, जात पात अखौती है, असी जन्म तो ही इक हाँ, एक पिता एक के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सो इस तरीके श्री गुरु अमरदास जी ने भी कहा कि जब तक असी प्रभु की अंश बच्चे विच नहीं पाते, बच्चा पैदा नहीं होता, अंश हर एक विच है, प्रभु जी अंश सर सब विच है। एक गल अलग है कि असं किस जात पैदा हुए हाँ, किस बरादरी पैदा हुए हाँ, साढ़ा काम कार की है। जात पात तो एक ही है लेकिन असी वंडी हुई है। ये सब साढ़े पिछले प्रलब्ध हैं, पिछले जन्म के कर्म अच्छे कितने पैदा हो गए हैं। सो अच्छे कर्म करांगे तो अगली अखौती उच्ची जात पैदा होवांगे, लेकिन उच्ची नीची जात कोई चीज़ नहीं है। नाव जो प्रीत लगी हर सेती, लोग छिपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिट दे छोड़े, हर नाम दियो लिया मुख लाए। तो नामदेव जी ने इस दे बाद वापस आए अपने पिंडरपुरी च और विठल भगवान ने अपनी गाथा सुना रहे हैं कि प्रभु मैं जगह जगह ते गया हाँ, लेकिन हमेशा तू मेरे नाल सी, तेरे बगैर किधरे नहीं गया मैं। और अखीर बिच कहा जाता है कि ये पंजाब की तरफ ही गए और गुरदासपुर के आस पास इन्हों की कोई यादगार है। सुनामदेव जी भी महाराष्ट्र के रविदास जी बनारस थे। जितने भगत हर सेवका वक 68 तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जितने भगत हर सेवका, गुरु साहब कह रहे हैं जितने भी भगत हुए हैं, जितने सेवक हुए हैं, मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए। हर तीर्थ स्थान ने 68 तीर्थ, हर तीर्थ स्थान ने तेरे संतां तेरे भक्तों के उपर तिलक लगाया है। तिलक लगाने जिसनों आदर दिता जाए। गुरु साहब कह रहे हैं कि तेरा भगत किसी जगह पर भी होवे, किसी जगह पर बैठा होवे, 68 तीर्थ भगतों के तिलक लगा रहे हैं। उन्होंने जी शोभा है, उन्होंने तीर्थों की शोभा है, भगतों के चेहरे पर नजर आ जाती है। ये गुरु साहब का कथन है, जितने भगत है सेवका मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए। क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब संतां भगतां दी इंतजार करते हैं। तुसीं खुद नोट किया है, महाकुंभ होया है, जगह जगह ते संत आए हैं। पहले वो शाही स्नान हुंदा है, फिर दूसरे लोग जाते हैं। सो साड़ी सभ्यता के मुताबक गंगा जमुना पवित्र हैं, लेकिन जब संत भगत उस अपने चरण पाते हैं, चरण धूर पाते हैं, फिर होर पवित्र हो जाता है, फिर असी स्नान करते हैं। सो संतां भगतों के चरण धूल है बहुत पवित्र है। जितने भगत है सेवका मुख 68 तीर्थ तिलक कढ़ाए, ते नानक तिन को अंसिन स्पर्श। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि उन्हां भगतों नूं मैं बिन रात उन्होंने चरण छू प्राप्त करना चाहना। जन नानक तिनको अंतिम पर से जी कृपा करे हर राय। अगर प्रभु कृपा करे, गुरु साहब कह रहे हैं कि अगर प्रभु कृपा करे, अगर मैं इजाजत दवे तो मैं भगतों के चरणा की धूर दिन रात लगाता रहा। इस शब्द के सारे है कि जन्म दे नाल कोई उच्चा नीचा नहीं हो जाता। उच्चा नीचा असं अपने कर्मा नाल होंदे हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो नीची जात वाला उच्चा बन जाता है, और बुरे कर्म करते हाँ तो फिर उच्ची जाति वाला भी ब्राह्मण ही नीचे कहलाया जाता है। ताड़ का पेड़ उसको नीचा गिनिया जाता है, क्योंकि ताड़ जो ताड़ी निकलती है, एक रस निकलता है जिस नशा होता है, बहुत तेज़ नशा होता है। सो लोग नफरत करते हैं ताड़ नफरत करते हैं, लेकिन उस ताड़ के पत्ते लिखने वास्ते सब तो अच्छे हैं। साढ़े वेद उपनिषद जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इन्हें ताड़ी के पत्तियों पर ही लिखे गए हैं। जब वो वेद ग्रंथ लिखे गए असं उन्होंने के सिर चुकाते हैं। साड़ा कर्म है कि जरा अपवित्र चीज़ पवित्र हो गई। गंगा के जल तो लोग शराब भी बनाते हैं, लेकिन वो शराब दुष्ट लोग पींदे हैं। वो शराब अगर ब्राह्मण पींदा है तो दुष्ट बन जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता, वो ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता। इस तरह ही नीचे जाता बंदा उच्चे कर्म करे उच्चा हो जाता है। पूरा गुरु ग्रंथ साहब रिच भक्त जानन, भक्तों की वाणी है। भगत हर जाति के हैं, रिच हर जाति के भक्त, हर जाति के मुस्लिम सूफिया भगतों का सब का वर्णन किया है। इस असी सिर झुकाते हैं इन्होंने अगर, क्योंकि सब ने एक ओंकार का वर्णन किया है। गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने भगतों का, उन्होंने संतों का, उन्होंने सूफिया का, उन्होंने शेख जी का, शेख फरीद का वर्णन है, जिन्होंने कि एक नाम का जाप किया है। भगत रविदास जी ने यह प्रूव करने के वास्ते कि वो एक नाम का जाप करते हैं, अपने जी मूर्तियां गंगा जी में समर्पित कर दी सन। एक नाम एक ओंकार, जब शुरू एक ओंकार सतगुर प्रसाद तो होता है कि प्रभु एक है, एक ओंकार एक है, अलग अलग हस्तियां नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नहीं हैं, एक है, एक ओंकार जड़ा है एक है, और प्राप्त होता है सतगुरु प्रसाद के नाल। अगर अपने गुरु नु तुसीं तन मन तन अर्पित कर देंदे हो, अपनियां सेवावां अर्पित कर देंदे हो, तद प्रभु तुहाडे ते तुहानूं प्रसाद देंदा है। दयालू होगा तुहानूं प्रसाद देंदा है, तुहाडे ते कृपा करदा है, तद एक ओंकार की प्राप्ति होंदी है। इस तरीके दे नाल इह शब्द दा जी छोटी जी उच्चारण ते कथा होई है जी, भुल चुक दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।